प्यारे बच्चों, हसन उस वक्त बहुत छोटा था जब उसकी वालदा उसे अकेला छोड़कर इस दुनिया से चली गई थी। सुतेली माँ की मुसलसल मारपीट और हर वक्त बुरा भला कहने ने उसे इंतहाई ढीठ और बिल्कुल बेहिस बना दिया था, इसीलिए वो हर किसी से झगड़ता रहता था।
अबे रुक, किधर मुंह उठाए चला जा रहे?
वो मैं अपने मामू के पास जा रहा हूँ।
अच्छा बेटा, बातें ना बना, अपनी साइकिल दे, जरा मैं चक्कर लगा कर आऊँ।
लेकिन मुझे देर हो जाएगी और मामू भी खाने पर इंतजार कर रहे होंगे।
हसन ने अरशद की एक ना सुनी और साइकिल लेकर फरार हो गया और एक घंटे बाद आकर साइकिल अरशद के सामने जमीन पर फेंकते हुए बोला,
देख और खबरदार जो मेरे घर तक बात पहुंचाई, तेरी खाल फेंक दूंगा।
अरशद बेचारा चुपचाप साइकिल लेकर रवाना हो गया। कुछ दिनों से हसन ने स्कूल जाना शुरू कर दिया था, लेकिन स्कूल में भी वो जल्दी झगड़ालू और शरीर मशहूर हो गया।
अरे वो देखो हसन आ रहा है, छोड़ो यार इसकी तरफ मत देखो, वो तो है ही झगड़ालू, हमें भी बदनाम करवा देगा।
इतने में हसन उनके करीब आ चुका था, उसका एक हाथ पुश्त की जाने था। उसने आते ही अपने पुश्त पर रखे हुए हाथ में पकड़ी छुपकली उन दोनों पर फेंक दी।
आखिर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, क्यों तुम हमें तंग कर रहे हो? बकवास बंद कर वरना मुक्का मारकर तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा, समझे? वाकई बात उल्टा टोल कोतवाल को डांटे, मैं तुम्हें हर चीज नहीं छोड़ूंगा। अरे नहीं छोड़ मुझे, क्यों डाल रहे हो मुझे? अगर इससे मेरी जान छुड़ाओ यार।
इतने में करीब से एक मास्टर साहब गुजरे और उन दोनों को दफ्तर ले गए।
सर इसने मुझसे बदतमीजी की थी। नहीं सर ये झूठ बोल रहा है, इससे पहले मुझसे छुपकली फेंकी और फिर मुझसे लड़ाई करना शुरू कर दी।
हसन तुम्हारी शिकायत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है।
तो मैं क्या करूँ सर?
हसन तभी से बात करो।
सर वो क्या होती है?
अपना मुँह बंद रखो वरना सख्त पिटाई लगाऊंगा, समझे?
क्यों सर, मैंने क्या किया है जो आप मेरी बिला वजह पिटाई लगाएंगे?
अच्छा तो तुम ये नहीं समझोगे।
ये कहते ही सर ने डंडा उठाया और फिर पूरी कुव्वत से हसन के हाथों पर चलाना शुरू कर दिया। मुसलसल डंडे खाने के बाद भी हसन पर लगता था कोई असर ही ना हुआ हो। आखिर सर थक कर रुक गए।
बस ये और कोई हरबा भी है,
चले जाओ यहाँ से।
शुक्रिया सर।
क्लास में भी वो सवालात के जवाब देते वक्त शरारत से काम लेता।
हसन तुम खड़े होकर बताओ कि अंग्रेजों ने कब से कब तक हुकूमत की?
सर सफा नंबर 110 से 210 तक।
खामोश रहो, आज के बाद तुमसे कुछ भी नहीं पूछूंगा।
घर के हालात भी स्कूल से मुख्तलिफ ना थे।
हसन न जाने तुम किस मिट्टी के बने हुए हो, मैं तो तुम्हें मार मार कर आजिज आ चुका हूँ और तुम हो इस धरने का नाम ही नहीं लेते। आखिर तुम कब ठीक होगे? अब तुम बच्चे तो नहीं हो, कुछ तो ख्याल करो।
एक रोज तमाम बच्चे असेंबली हॉल में खड़े हुए थे कि अचानक हेडमास्टर साहब की आवाज गूंजी।
तमाम तलबा इकराम को मुतर किया जाता है कि कल हमारे स्कूल में एक शानदार जलसे का इनेकाद किया जा रहा है जिसकी सदारत महकमे तालीमात के सेक्रेटरी साहब करेंगे। तमाम तलबा उसमें भरपूर तआवुन करें और अपने घरों से साफ सुथरा लिबास पहन कर आएं।
दूसरे दिन जब हेडमास्टर साहब स्कूल पहुँचे तो स्कूल की सजावट को देखकर हैरान रह गए।
वाह भाई वाह, तुम लोगों ने तो कमाल कर दिया। मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं किसी दूसरे स्कूल में आ गया। अच्छा मैं जरा ऑफिस में चलता हूँ। उमेर आप ऐसा करें, मास्टर नजीम को कहें कि वो ऑफिस में आ जाएं, मैं उनसे कुछ बात करना चाहता हूँ।
ठीक है सर, अस्सलाम वालेकुम। सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ?
वालेकुम अस्सलाम जी, अंदर आए।
सर आपका हेड मास्टर साहब ने ऑफिस में बुलाया है।
सही है, आप चले मैं आता हूँ।
शुक्रिया सर।
सर क्या आपने मुझे बुलाया था?
जी हाँ, वो दरअसल मुझे हसन की जानिब से खटका लगा हुआ था, ऐसा ना कि वो सारा प्रोग्राम खराब कर दे। तुम ऐसा करना कि उसके साथ बहुत ही अच्छा मामला रखना और तड़वे में जो केक तकसीम होगा उसमें से उसे ज्यादा हिस्सा देना। उसे ये भी बताना कि जिन बच्चों को इनाम मिलेगा उसमें तुम्हारा नाम भी है, ताकि वो शरारत से बाज रहे।
सही है सर। और फिर कुछ ही देर बाद मोहतमय तालीमात के सेक्रेटरी साहब की कार स्कूल में दाखिल होती हुई नजर आई। हेडमास्टर साहब खुद उन्हें लेने के लिए गए। इतने में स्कूल के चपरासी ने हॉल की जानिब दौड़ लगा दी।
अरे दरवाजा अंदर से किसने बंद कर दिया? चलो दूसरे दरवाजे से दाखिल होकर कौन लूंगा। ओहो ये दरवाजा भी बंद है, शायद पिछला दरवाजा खुला होगा। मेरे अल्लाह पिछले दरवाजे पर ताला किसने लगा दिया है? आज क्या होगा?
चपरासी घबराया हुआ हेडमास्टर साहब के पास आया और उन्हें इशारे से अपनी तरफ मुतवज्जह किया।
क्या बात है भाई, इतने परेशान क्यों हो?
वो सर किसी ने हाल के दोनों दरवाजे अंदर से बंद कर दिए और पीछे दरवाजे को भी ताला लगा दिया है।
उफ मेरे अल्लाह, ये जरूर हसन की शरारत है। खैर तुम ऐसा करो ताला तोड़ डालो।
फिर वो सेक्रेटरी साहब की तरफ मुतवज्जह हुए और उनकी तवज्जो बाग की तरफ करवा कर बोले,
सर आप एक नजर बाग पर भी डाल लीजिए।
ओह हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल बिल्कुल।
इसके बाद मास्टर साहब उन्हें लेकर हॉल की तरफ चल दिए। फिर में सेक्रेटरी साहब ने अपनी तकरीर में हेडमास्टर साहब की खूब तारीफ की।
मुझे फख्र है कि हमारे इस मुल्क में हेडमास्टर हजरत का साथ जैसे लोग ही मौजूद हैं। वाकई हमारे मुल्क को मिलत का काबिल फख्र कर रहा है।
सेक्रेटरी साहब हेडमास्टर साहब की खूब तारीफ कर रहे थे, लेकिन हेडमास्टर साहब हसन के मामले में अपनी नाकामी पर बहुत शर्मिंदा थे। अगले दिन उन्होंने हसन को ऑफिस में बुलवा कर पूछा,
हसन?
यस सर।
तुमने कल ऐसी खराब हरकत क्यों की? तुमने इतना भी नहीं सोचा कि स्कूल बदनाम होगा और तुम्हारे असातिज़ा की बेइज्जती होगी?
सर मैंने भी हरकत नहीं की और न ही मुझे किसी बात की कोई खबर है। जबरदस्ती मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है सर।
हसन झूठ मत बोलो, मुझे सब मालूम है।
सर ये तो वही बात है कि बद से बदनाम बुरा।
मैं कहता हूँ खामोश हो जाओ, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी।
ये कहते ही मास्टर साहब ने डंडा उठाया और हसन के हाथों पर बरसाने लगे। एक दिन हसन बैठा हुआ सोच रहा था,
इस मर्तबा कोई ऐसा काम करना चाहिए कि हेडमास्टर साहब से अपनी मार का बदला चुकाया जा सके, लेकिन मैं करूँ तो क्या करूँ? अरे वाह जबरदस्त आइडिया, अब तो मजा ही आ जाएगा।
अपने मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए छुट्टी के वक्त वो बाथरूम में छुप गया। जब तमाम स्कूल खाली हो गया तो हसन चुपके से निकला और हेडमास्टर साहब के कमरे की खिड़की से अंदर कूद गया और चुपके से सालाना इम्तिहान के पर्चे उठाए और स्कूल की पिछली दीवार से कूदकर घर चला गया। फिर जो ही वो स्कूल में दाखिल हुआ उसे मालूम हो गया कि उसकी चोरी पकड़ी गई है और अब उसके बारे में मशवरे हो रहे हैं। उधर ऑफिस में तमाम असातिज़ा हसन की मुखालफत में राय पेश कर रहे थे।
सर पानी सर से ऊंचा हो चुका है, हसन ने चोरी की है सर, पर उसे तो पुलिस के हवाले करना चाहिए।
सर कम से कम उसे स्कूल में रखना तो सरासर बेवकूफ़ी है, इसे यहाँ रहने दिया गया तो दूसरे लड़के भी खराब हो जाएंगे। एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा करती है सर।
सर अगर इस बात को नजरअंदाज कर दिया गया तो स्कूल की कोई हैसियत ना रहेगी और हम लोग बदनाम हो जाएंगे सर।
हेडमास्टर साहब तमाम बातें खामोशी से सुनते रहे, लेकिन उनके दिल से यही आवाज आ रही थी,
तुम निकम्मे हो, पढ़ाना नहीं जानते, क्या सिर्फ मारना ही राज है? कोई नई तब्दील करो, हसन को तबाही से बचाना तुम्हारा काम है। तुम उस्ताद हो, बाप से ज्यादा मेहरबान, कुछ तो सोचो।
हेडमास्टर साहब ने एक बहुत बड़ा फैसला कर लिया था जिसे वो बार बार जेरे लब दोहरा रहे थे। उसी वक्त उन्होंने दफ्तर में ऐलान किया,
तमाम असातिज़ा अपनी अपनी क्लासों के लड़कों समेत हाल में जमा हो जाएं।
बाहर आते ही असातिज़ा आपस में चैन मुहैया करने लगे।
मुझे तो लगता है कि कोई सख्त सजा मिलेगी और मुमकिन है कि पुलिस के हवाले भी कर दिया जाए।
मेरा तो ख्याल है हसन का नाम काटकर इसे स्कूल से खारिज कर दिया जाएगा।
हर एक शख्स अपने जहन में अपने ख्याल के मुताबिक बातें सोच रहा था। हेडमास्टर साहब डंडा हाथ में लिए हॉल में दाखिल हुए और कुर्सी पर बैठकर एक नज़र तमाम तलबा और अस्तादा पर डालकर उन्होंने कहा,
हसन।
हाजिर जनाब।
मेरे मरीबा।
आज न जाने क्यों हसन के दिल पर खौफ छाया हुआ था। उसके हाथ पांव कांप रहे थे।
हसन, मुझे बहुत अफसोस है कि मैं तुम्हें दुरुस्त न कर सका। ये सरासर मेरी गलती है। मैंने तुम्हें ठीक करने का सही तरीका इख्तियार नहीं किया और अब तक तुम्हें मारता ही रहा हूँ। अब तुम ये बैग संभालो और मेरी गलती की मुझे खूब सजा दो।
मुझे माफ कर दे सर, मैंने आपको बहुत तंग किया है सर, मुझे माफ कर दे। मैं आज तक कभी कोई गलत हरकत नहीं करूँगा सर।
दो चार मिनट में ही उसकी फितरत से सारे पलते उतर चुके थे और वो आदमी बन गया था।